गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु कर जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु एवं उनकी कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। शिष्य वह है जो गुरु के उपदेशों का अक्षरशः तथा भावशः पालन करता है तथा उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार अपने से कम विकसित जीवात्माओं में आजीवन करता रहता है। वास्तविक शिष्य केवल गुरु के दिव्य स्वरूप से ही संबंध रखता है। गुरु जो मानव होने के नाते कार्य करते हैं उनकी वह चिंता नहीं करता, वह इस ओर पूर्ण विस्मरणशील सा रहता है। उसके लिए गुरु गुरु है। यह सदा स्मरण रखे कि संत का स्वरूप अतल स्पर्श होता है। उनके विषय में अपना कोई मत न बनाइए, अपनी अज्ञानता के अक्षम मापदंड से उनके दिव्य स्वरूप को न नापिए। व्यापक दृष्टिकोण से संपादित अपने गुरु के कार्यों की आलोचना न कीजिए। गुरु विशुद्ध शिष्यत्व दृष्टि का उन्मीलन करते हैं। वे शिष्य की आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित तथा प्रस्तुत क्षमताओं को उद्बोधित करते हैं। यह आध्यात्मिक पथ की यात्रा में सर्वाधिक आवश्यक पाथेय है। गुरु तथा शिष्य एक बन जाते हैं। गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं तथा उन्हें प्रेरणा देते हैं। वे शिष्य में शक्ति संचार करते हैं, उसे रूपांतरित करते हैं तथा आध्यात्मिक बनाते हैं। सच शिष्यों के पास चाहे ऐहिक सुख सुविधाओं के ढेर हो, चाहे अनेकों प्रतिकूलताएं हो, फिर भी वे सदा मुस्कुराते हुए जीवन बिताते हैं, मुस्कुराते हुए ईश्वर के रास्ते जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच जो दैवी संबंध होता है उसे दुनियादार क्या जाने। सच्चे शिष्य सद्गुरु के चरणों में मिट जाते हैं और सच्चे सद्गुरु निगाहों से ही शिष्य के हृदय में बस जाते हैं। श्री इंद्र सिंह राजपूत अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मेरे परिचित एक सज्जन के जीवन की यह घटना है। बात सन 1986 की है। पूज्य बापूजी शहर के शोरगुल से दूर पुण्य सलीला साबरमती के किनारे एकांत में कुटिया यानी मोक्ष कुटीर में रहते थे। चारों तरफ बिहड़ ऊंची नीची जमीन और कटियारी झाड़ियां थी। अधिकांश समय बापूजी परमात्म ध्यान में निमग्न रहते थे। कुछ समय के लिए ही कुटिया से बाहर आकर भक्तों को दर्शन एवं सत्संग देते थे। सत्संग में पूज्य श्री वेदांत के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं और जिज्ञासुओं की कठिन से कठिन गुत्थियों को भी सरल भाषा में सुलझा देते थे। यही नहीं, किसी को भक्ति का रस चखाते तो किसी को ऐसे ध्यान की गहराइयों में ले जाते हैं जहाँ बड़े बड़े योगियों के भी पहुँचने में वर्षों लग जाते हैं। कई घंटों साधन ध्यान की मस्ती में वे डूबे रहते थे। उस समय एक सज्जन वेदांत जैसे कठिन विषय पर पीएचडी कर रहे थे। उन्हें इस विषय पर प्रतिबंध लिखना था। वे इसी संबंध में अपने कुछ प्रश्नों के समाधान हेतु पूज्य बापूजी से मिलने आश्रम में आए। आश्रम परिसर में प्रवेश करते ही उन्होंने जो अनुभव किया उसका वर्णन करते हुए वे बताते थे कि अलौकिक दिव्यता का उन्हें एहसास हुआ। मन अनोखी शांति और आनंद से भर गया। मोक्ष कुटीर के आसपास घूमते हुए मुझे विचार आया कि यह स्थल कितना शांत व ऊंचे आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के आश्रमों के आध्यात्मिक वातावरण का जो वर्णन पढ़ने को मिलता है वह आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। काश इस वातावरण में रहने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मैं इधर ही बैठ के लिखूंगा। मेरा इतना सोचना ही था कि एक आवाज सुनाई पड़ी। क्या सोचता है, इधर रहने की इच्छा है तो रह जा। तेरे जैसे जिज्ञासुओं के लिए ही तो यह आश्रम बनाया है। अपनत्व भरी हृदय परशी ओजस्वी वाणी मोक्ष कुटीर के अंदर से आई जहां बापूजी ध्यान कर रहे थे। ये शब्द सुनकर मैं चौंक गया कि मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं उनको ये महात्मा कैसे जान गए। मैंने तो किसी से कुछ कहा नहीं। बड़ा आश्चर्य है। बस फिर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण संत नहीं, कोई सिद्ध महापुरुष है। बापूजी के सत्संग से उन सज्जन को अपने सभी प्रश्नों का हल भी मिल गया और दिव्य अनुभव भी हुआ, जिसका वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि वेदांत शास्त्र का अध्ययन तो मैं कई वर्षों से कर रहा था लेकिन वेदांत का सार तो अब पता चला। अब मैं इन बाबा जी की शरण नहीं छोड़ूंगा। उस नवयुवक ने नौकरी का लालच छोड़ दिया और शादी से इनकार कर दिया। घर वालों को बोल दिया कि अब मैं ईश्वर प्राप्ति की राह चलूंगा और सद्गुरु देव के चरणों में रहकर ही ईश्वर प्राप्ति करूंगा।